नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अधिक उपज, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यकों पर हमले की कड़ी निंदा की, विद्यार्थियों से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने को कहा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग पर चट्टाने खिसकने से वाहनों की आवाजाही रुकी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन के कारण जनजीवन प्रभावित। और पेरिस ओलंपिक खेल 2024 का आज रात भव्य समारोह के साथ समापन। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिक पैदावार वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की। इन किस्मों में 61 फसलें शामिल हैं, जिनमें 34 खेती की तथा 27 बागवानी की फसलें हैं। खेती की फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के बीज शामिल हैं। वहीं बागवानी फसलों में फल, सब्जी, कंदमूल, मसाले, फूल और औषधि पौधों के बीज हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। नई फसल किस्मों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे कृषि में मूल्यवर्धन होगा। किसानों ने कहा कि नई किस्मों से उनके खर्चों में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने मोटे अनाज का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लोग पोषक खानपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में बात करते हुए कहा कि आम जनता का जैविक कृषि पर भरोसा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग जैविक खाद्य पदार्थों का उपभोग कर रहे हैं और इनकी मांग बढ़ रही है। किसानों ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र की जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्रों को नई किस्मों के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। श्री मोदी ने नई फसल किस्म विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की। वैज्ञानिकों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री के सुझावों के अनुरूप काम कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से कहा कि आज किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब 65 फसलों की 109 किस्में जारी की गई हैं।
हमारे वैज्ञानिकों ने अद्भुत काम किया और 65 फसलों की 109 प्रजातियों के बीज तैयार किए। बागवानी की आम की ऐसी किस्में तैयार की जो जल्दी खराब नहीं होगी, दिखने में भी सुंदर हो, स्वादिष्ट भी हो, जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। एक्सपोर्ट हम कर भी रहे हैं। ये 109 नई किस्में किसान की जिंदगी भी बदलेगी, उनकी लाभ को भी बढ़ाएगी और जनता के लिए भी पोषण की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगी, हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगी।
श्री चौहान ने कहा कि इन फसलों के बीज जलवायु अनुकूल हैं और खराब मौसम में भी अधिक पैदावार दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये किस्में पोषक तत्वों से भरपूर हैं।
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और जो कृषि उत्पाद मिले वो ऐसे मिले जनता को जो पोषण युक्त हो, मानव शरीर को भी स्वस्थ रखे ताकि उत्पादन बढ़ सके, उत्पादन की लागत भी घट सके और जनता को पोषण युक्त आहार मतलब अनाज, फल, सब्जियां मिल सके। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को बधाई देना चाहूंगा।
हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम में मौजूद कुछ किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने भरोसा जताया कि इन फसलों से आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
रविंदर कुमार, गांव नंगल ठाकरन, दिल्ली। प्रधानमंत्री जी ने जो हमें जो नई किस्में दी हैं, तो उसमें जो बाजरे की किस्म है वो 70 दिन में फसल उग जाती है, पूरे उपज किसान के हाथ में आ जाती है। नॉर्मली हमें उपज लेने में 90 से 100 दिन का समय लगता है, लेकिन इससे चूंकि हमें 70 दिन में मिल जाएगी, तो अब जलवायु परिवर्तन की वजह से बेमौसम बारिश हो जाती है तो उससे भी हमें फायदा होगा और हमारे जो 20 से 30 दिन बच रहे हैं इससे हमें जो है ना उस समय का कई अलग फसल चक्र में उपयोग कर सकते हैं और हमारी मजदूरी कम लगेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूसा संस्थान में 109 वैरायटियों का जो है उद्घाटन किया। इसमें किसानों को जो है हमारे से उन्होंने सवाल किया प्रधानमंत्री जी ने कि इनसे आपको किस तरह से लाभ होगा, तो हमने बताया जो दो वैरायटियां इन्होंने निकाली हैं धान की 1979 और 1985, इन वैरायटियों में सीधी बिजाई किसान कर सकता है। एक तो लेबर की समस्या के चलते जो हम सीधी बिजाई कर सकते हैं और इसमें जल की भी 40% तक जो है बचत होगी।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की मुठभेड़ में सेना के दो जवान वीरगति को प्राप्त हो गए तथा दो नागरिक घायल हुए। ये मुठभेड़ कल कोकरनाग क्षेत्र के गागर मांडो इलाके की अहलान बस्ती में हुई। अंतिम समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी है और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के दो जवानों के जान गंवाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री सिंह ने साहसी और निर्भीक जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और कहा है कि दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध है।
अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई?
उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया।
क्या बताया?
6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है, 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है।
बहुत बढ़िया, दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है
रक्षा, रोकथाम और उपचार।
अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित श्री यूनुस ने विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे विद्यार्थियों से सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों की रक्षा करने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा करते हुए वर्ग, धर्म या अन्य किसी आधार पर हिंसा का विरोध करने की संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री हक ने हिंसा से प्रभावित हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की पुनर्वास में सहायता करने की संयुक्त राष्ट्र की वचनबद्धता व्यक्त की। इस बीच अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के हजारों लोगों ने कल बांग्लादेश की राजधानी ढाका और चटगांव में लगातार दूसरे दिन व्यापक विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारी अल्पसंख्यकों पर हमले के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए विशेष ट्राइब्यूनल बनाने, संसद में 10% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित करने और अल्पसंख्यक संरक्षण कानून बनाने की मांग कर रहे थे। अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए छात्रों सहित मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। अमरीका के वॉशिंगटन में भी कल बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और अन्य समूहों को निशाना बनाकर हुई हिंसा के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस बीच भारतीय मूल के अमरीकी सांसदों ने अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के बारे में अमरीकी कांग्रेस में सुनवाई करने की मांग की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल की 2 दिन की यात्रा पर आज काठमांडू पहुंचे। वे नेपाल के विदेश सचिव सेवा लामसल के आमंत्रण पर आए हैं। हवाई अड्डे पर श्री मिश्री का सुश्री लामसल ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के विदेश सचिव नेपाल भारत संबंध, आपसी हित और सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा श्री मिश्री नेपाल सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें भी करेंगे। भारतीय विदेश सचिव की नियमित नेपाल यात्रा है। ये यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में नेपाल के साथ संबंधों को प्राथमिकता को प्रदर्शित करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। तिमोर लेस्ते में कल राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह सम्मान मिलने पर असीम गर्व व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए गौरव का क्षण है कि भारत की राष्ट्रपति को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का कल हरियाणा के गुरुग्राम में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नटवर सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री सिंह ने विदेश मंत्री और अन्य पदों पर रहते हुए राष्ट्र की सेवा की थी। श्री मोदी ने कहा कि श्री सिंह ने विदेश नीति और वैश्विक कूटनीति में समृद्ध योगदान दिया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2024 की परीक्षा आज आयोजित हो रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड कंप्यूटर आधारित इस परीक्षा को दो पालियों में संपन्न करा रहा है। इस प्रवेश परीक्षा में 2,00,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है
और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को harghartiranga.com पर अपलोड करें।
ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने देश के पूर्व पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अगले 5 दिन तक तेज बारिश की भविष्यवाणी की है। एक रिपोर्ट।
उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेताला और ज्ञानसू के समीप भूस्खलन के बाद यातायात बाधित है। साथ ही यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी डाबरकोट के पास मलबा आने के कारण आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। वहीं चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर छिनका के समीप भूस्खलन के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है। इसके अलावा राज्य में ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाले करीब 100 संपर्क मार्ग भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मलबे के आने से बंद है। सभी सड़क मार्गों को खोलने का प्रयास जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज चमोली और बागेश्वर जिले में आज कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के अनेक हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। वर्षा का यह दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहने का अनुमान है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
इस बीच हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज वर्षा जारी है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दूर दराज के किन्नौर जिले में भारी भूस्खलन हुआ है जिसके कारण कई किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षति पहुंची है। हालांकि किसी के हताहत होने का समाचार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल में भूस्खलन से गंभीर रूप से प्रभावित वायनाड को पूर्ण सहायता देने का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने आपदा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वायनाड में भूस्खलन ने सभी को आहत किया है। उन्होंने कहा कि त्रासदी के बाद से वो स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और केन्द्र सरकार ने प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने कल प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया था और पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने राहत शिविरों का दौरा किया और घायलों से बातचीत भी की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। अमरीकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि दोनों के पास अडानी समूह से जुड़ी ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। बुच दंपत्ति ने कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है और सेबी को हर आवश्यक दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। लगभग 3 सप्ताह तक चली रोमांचक खेल स्पर्धाओं के बाद आज रात पेरिस ओलंपिक खेल संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इस दौरान 80,000 दर्शकों के स्टेडियम में मौजूद रहने की संभावना है। समापन समारोह में ओलंपिक का ध्वज 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति को सौंपा जाएगा। इस ओलंपिक में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर 71वां स्थान हासिल किया है। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर इस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाकर इतिहास रचा। वे ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर की मिक्स टीम एयर पिस्टल स्पर्धा में एक और कांस्य पदक जीतकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला होने का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। स्वप्निल कोसाले ने निशानेबाजी में 3रा पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भारत के उभरते हुए पहलवान अमन सहरावत 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। चीन ने 39 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं अमरीका 38 स्वर्ण, 42 रजत और 42 कांस्य पदकों के साथ दूसरे, जबकि ऑस्ट्रेलिया 18 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अधिक उपज, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यकों पर हमले की कड़ी निंदा की, विद्यार्थियों से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने को कहा। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा मार्ग पर चट्टाने खिसकने से वाहनों की आवाजाही रुकी। और पेरिस ओलंपिक खेल 2024 का आज रात भव्य समारोह के साथ समापन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।